SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
২০২৪ के भारतीय चुनाव परिणाम का विश्लेषण करने के लिए आज हम बात करेंगे डॉक्टर दलबीर अहलावत से, जो सिडनी के मक्वारी यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी स्टडीज और क्रिमिनोलॉजी विभाग के सीनियर लेक्चरर हैं। आपको बता दें कि इस अंश में व्यक्त किए गए विचार और जानकारी सामान्य है, जिससे SBS ना सहमत है ना असहमत है। दलबीर जी, SBS हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि 2024 के भारतीय चुनावी परिणाम क्या दर्शाते हैं, क्या संकेत देते हैं?
देखिए, 2024 का जो चुनाव है, ये एक बहुत ही अहम चुनाव है। ये दिखाता है कि भारत में डेमोक्रेसी बहुत ही मैच्योर है और जो वोटर है, वोटर बहुत ही कॉन्शियस है और उसको पता है कि कहाँ पे वोट डालनी है। और इससे लगता है कि जैसे लोअर हाउस है इंडिया में, जिसको लोकसभा कहते हैं, 543 सीट हैं। इसमें जो एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो बीजेपी का है, वो 292 सीट्स मिली हैं। और जो कांग्रेस के साथ है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, उसको 232 सीट मिली है, अदर्स को 19 मिली है। तो बहुत ही हेल्दी ओपोजिशन अमर्ज होके आई है। तो इसलिए फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट बनाएगी, लेकिन ओपोजिशन भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। तो वो एक जो डेमोक्रेसी में चेक एंड बैलेंस होता है, वो सिस्टम फर्स्ट टाइम ऐसी इक्वेशन भारत के चुनाव में बन के आई है।
दलबीर जी, आपके अनुसार अगले दो दिनों में बीजेपी और कांग्रेस क्या क्या रणनीतियां अपनाएंगे और कौन सी पार्टी बनाएगी सरकार?
देखिए, जो सरकार, मेरे को जहां तक लगता है, वो बीजेपी ही बनाएगी, क्योंकि बीजेपी के पास 290 है बीजेपी अलायंस के साथ, और इंडिया अलायंस के साथ 232 है। तो इसमें काफी गैप है। बीजेपी के पास चंद्रबाबू नायडू की TDP है, जिसकी 16 सीट है, और नीतीश कुमार का जनता दल यूनाइटेड है, जिसकी 12 सीट है। अब 292 में से यदि आप 16 निकाल देंगे, फिर भी बीजेपी मेजोरिटी में है, या फिर नीतीश कुमार का ज्यादा है कि वो पलट सकते हैं। 292 में से 12 निकाल देंगे, फिर भी उनके पास 280 बच जाता है। तो 272 उनको चाहिए सरकार बनाने में। इसलिए चंद्रबाबू नायडू बहुत स्टेबल हैं, वो पहले भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और उनका बीजेपी के साथ बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। जब वो जेल में गए थे, उस टाइम बीजेपी ने उनको सपोर्ट किया था। तो इसलिए लगता है कि नीतीश कुमार भी यदि चले जाते हैं, तो ये बीजेपी ही सरकार बनाएगी। और यदि नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू एनडीए की तरफ जाते, जो अलायंस है, उनमें उनको अनसर्टेनिटी रहेगी कि वो सरकार चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, कितने दिन चलेगी। लेकिन यहाँ बीजेपी के साथ उनको एक वो सर्टेनिटी है कि ये सरकार चलेगी अगले 5 साल।
एग्जिट पोल्स में अनुमान लगाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत हासिल करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। तो बीजेपी अधिक सीटें हासिल करने में असमर्थ क्यों रही, इसके पीछे क्या कारण है?
देखिए, भारत में जो लोकतंत्र है, एक बहुत ही वाइब्रेंट है। काफी पहले भी काफी ऐसे इंस्टांसेस हुए हैं, जैसे कि पहले 1975 में इमरजेंसी लगा दी थी, तो लोगों ने कांग्रेस को वाइप आउट कर दिया। तो कांग्रेस पार्टी का 2014 इलेक्शन देखेंगे कि ये काफी करप्शन थी वहां पे, तो लोगों ने इसको बिल्कुल निकाल दिया। तो भारत का वोटर बहुत ही सेंसिटिव है और बहुत ही पैनी नजर रखता है राजनीति पे। बीजेपी ने नो डाउट 10 साल में काफी ट्रांसफॉर्म हुआ है, देश काफी तरक्की की है, बाहर भी इंडिया की इमेज है, आज वर्ल्ड की 5th largest इकोनॉमी है। लेकिन जो अर्बन एरियाज इन डेवलपमेंट्स को समझते हैं, इकोनॉमी, स्पेस साइंस और फॉरेन रिलेशंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, लेकिन जो रूरल एरिया है और जो रीजनल एरिया है, वहां पे प्रॉब्लम्स अलग है। सच एज अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, वो बीजेपी के अभी तक ग्रास रूट तक शायद नहीं पहुंच पाई। इसलिए लोगों में एक ये था कि हमारे यहाँ जो डिमांड थी, 10 साल हमने चांस दिया, 10 साल में हमारी डिमांड्स नहीं हुई, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, शायद उस रेस्पॉन्स में और एंटी इनकम्बेंसी वेव को देखते हुए बीजेपी को इतनी वोटें नहीं मिली जितनी कि पहले 2019 में मिली थी।
एक बहुत ही चौंकाने वाला परिणाम ये है कि बीजेपी फैजाबाद के निर्वाचन क्षेत्र में अपनी सीट हार गई, और यही अयोध्या राम मंदिर भी स्थित है। इस हार के पीछे क्या कारण है?
देखो, अयोध्या के साथ हिंदुओं की, मेनली हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, और वो आज की नहीं है, वो सेंचुरीज से है। इसलिए जहां पर भी आप देखेंगे कि अयोध्या मंदिर जहां बना है, लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, धार्मिक आस्थाएं थी। लेकिन अभी जो जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिक्स में ठीक है, उन्होंने उस चीज को कैश करना चाहा, लेकिन वोटर क्या है कि इंडियन वोटर बहुत ही समझदार है, वो देखता है कि इस धर्म धर्म के बेसिस पे आप देश नहीं चला सकते। आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा, और वो भी अभी वोटर भी थोड़ा एडवांस हो चुका है, वो अपना एजेंडा देखता है, वो अपना भी देखता है, स्टेट लेवल पे देखता है और नेशनल लेवल पे देखता है। इसलिए आप उस कंस्टिट्यूएंसी में सिर्फ धर्म के बेसिस पे वोट चाहते हैं, वो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, और उन्होंने जो कैंडिडेट ने बेटर अल्टरनेटिव दिया, उस कैंडिडेट को उन्होंने वोट दिया, लेकिन धर्म को उन्होंने राजनीति के साथ ऐड नहीं किया। तो ये दिखाता कि भारत का जो वोटर है वो बहुत ही सेंसिटिव है, और वो नेशनलिज्म की तरफ ज्यादा झुकाव है। तो इसलिए वोटर ने ये दिखाया है कि वो सेग्रीगेशनल क्लीवेजेस में ना जाके रिलीजन, रेस, एथनिसिटी, कास्ट, उन्होंने नेशनल डेवलपमेंट को एक वोट दिया है।
दलबीर जी, आपके अनुसार इन चुनावी परिणामों का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है?
देखिए, ये एक बहुत ही अहम चुनाव है जहां इंडिया में टू पार्टी सिस्टम अमर्ज हुआ है, क्योंकि 1952 में वन डोमिनेंट पार्टी स्टार्ट हुई आजादी के बाद। कांग्रेस ने देश को आजादी दी और लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, उसके बदले में कम्युनिस्ट सोशलिस्ट पार्टीज थी लेकिन वो माइनॉरिटी में थी। तो वन डोमिनेंट पार्टी से 1977 में फिर वन एंड हाफ पार्टी सिस्टम अमर्ज हुआ, जब कांग्रेस को बाहर निकाला इमरजेंसी के बाद, तो जनता पार्टी पावर में आई, वन एंड हाफ पार्टी सिस्टम आप कह सकते हैं। 2000 अर्ली 2000s में कांग्रेस फिर वन डोमिनेंट पार्टी हो गए, 2014 में बीजेपी पावर में आई तो वन डोमिनेंट पार्टी हो गया। तो अब फर्स्ट टाइम ये लगता है कि जो पूरा जो साइकिल 1952 में स्टार्ट हुआ था, 2024 में वो कंप्लीट हो गए, इंडिया एक मैच्योर डेमोक्रेसी बन गया है जहां इलेक्शन भी इश्यू बेस्ड है
जी
और टू स्ट्रॉन्ग पार्टी सिस्टम अमर्ज होके आया है। तो इसमें क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में इसमें ज्यादा चेक एंड बैलेंस होंगे, और ओपोजिशन पार्टी का प्रेशर रहेगा गवर्नमेंट के ऊपर, तो इससे गवर्नमेंट को बेटर परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही हेल्दी ट्रेंड है, और इसमें एक इंक्लूसिव प्रोसेस है, जैसे कि डिफरेंट कम्युनिटीज यदि अलग महसूस करती है वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम में, अब
जी
उनका से होगा इसमें, या तो डिसीजन मेकिंग में होगा या ऑपोजिशन में होगा, जहां वो चेक एंड बैलेंस कर सके। सो मेरे ख्याल से ये बहुत ही एक अच्छी स्टेप है, एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है भारत के लोकतंत्र के लिए।
जी
पहले सरकार का डोमिनेंस था, सरकार ने अपने फैसले ले सकती थी, लेकिन अभी ऑपोजिशन के बगैर वो मेजर डिसीजंस, फैसले नहीं ले सकती।
तो दलबीर जी, ये बताइए कि 2024 के चुनाव परिणाम का भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि जो कि बीजेपी फिर दोबारा सरकार बनाएगी। इसमें क्या है कि एक तो ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड लिंक है प्राइम मिनिस्टर मोदी के और हमारे प्राइम मिनिस्टर के, वो अभी तक 8 बार मिल चुके हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, तो इसमें उनकी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है। वरना सरकार बदलती है, नया प्राइम मिनिस्टर आता है, आपको लिंक स्टेब्लिश करने पड़ते हैं, अंडरस्टैंड करना पड़ता है पर्सनलिटी को, लेकिन मोदी के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशंस है। फिर क्या है काम, हमारे जो बायलेटरल रिलेशंस हैं वो स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ जा रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक इकोनॉमी हो, पीपल टू पीपल रिलेशंस हो, जियोपॉलिटिक्स जियो स्ट्रेटेजी में है, या और इंटरनेशनल फोरम्स पे है, जैसे इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया की सपोर्ट है, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का बनना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट करता है। इसी तरह से इंडिया भी ऑस्ट्रेलिया के जो मेजर कंसर्न्स हैं इंडियन ओशियन में या पैसिफिक ओशियन में, इंडिया ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करता है। सो दोनों कंट्रीज में एक साइनर्जी है और उस साइनर्जी को और ज्यादा बूस्ट मिलेगी।
तो दलबीर जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, भारत में इलेक्शन इलेक्शन नहीं है कि आप जाओ और वोट डालो। इलेक्शन एक फेस्टिवल है। लेडीज हैं वो गीत गाते हुए जाएंगी ग्रुप में, जेंट्स हैं वो ड्रम बजाते हुए जाएंगे, डांस करेंगे, म्यूजिक चलेगा। सो लार्जेस्ट इलेक्शन इन ह्यूमन हिस्ट्री, विटनेसिंग यूर सेल्फ इन इट सेल्फ इज ए बिग इवेंट एंड वी शुड सेलिब्रेट ऑल्सो।
Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.